Mercy, Savior. Om Namah Siddhevyah. Om Namah Siddhevyah. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Sayalo Vasaganivaha Samvarane Vajasafittanti Pasasatasanamiyum Pasanuyoam Paruvemo. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार रचना की, जो उपदेश हमें मन में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो 5वां खंड वर्गणा खंड, उसमें अभी हम कर्म अनुयोग द्वार देख रहे हैं और पृष्ठ संख्या 167। आवाज कम हो गई। हेलो 167 पेज है। 166 में अंत में एक शब्द पढ़ेंगे हम। देखो, यहाँ भी अंतर की बात चल रही है और उसमें भी पीत लेशा में अंतर देख रहे हैं। आवाज नहीं है। अभी आ रहे? अभी ठीक है। देखो, पीत लेशा का अंतर देख रहे हैं हम। हेलो। तो उसमें हमने देखा था कि नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और तप कर्म में तो अंतर नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल उन्होंने बताया था, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट दो अंतर्मूर्त अधिक कुछ कम 250 सागर, उसकी भी हमने विस्तार से बात की थी। अब अंतिम शब्द उसका लेना है 166 पृष्ठ का। इस प्रकार अधक कर्म का उसी पोजीशन में आवाज कम ज्यादा हो रही है। इस प्रकार अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 2 अंतर्मूर्त अधिक कुछ कम 250 सागर होता है। ये दो बात उन्होंने बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे।
हेलो, ओके।
इसी प्रकार क्रिया कर्म का भी उत्कृष्ट अंतरकाल कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट अंतरकाल 5 अंतर्मूर्त कम 250 सागर है। जैसे उन्होंने अधक कर्म पर घटित किया था, तो क्रिया कर्म का भी उत्कृष्ट अंतरकाल ऐसे घटित करना है। पीतलेशा के शुरू में उन्होंने समय को प्राप्त किया, फिर अंत में उसको घटित करेंगे। पद्मलेशा में भी इसी प्रकार कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 2 अंतर्मूर्त अधिक कुछ कम 185 सागर है। इसी प्रकार क्रिया कर्म का भी उत्कृष्ट अंतरकाल कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 5 अंतर्मूर्त कुछ कम 185 सागर है। अब शुक्ल लेशा में बताएंगे। शुक्ल लेशा में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, इरियापद कर्म और तपक कर्म नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 2 अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर है, जैसे पहले वो नीचे के स्वर्गों में घटित किया था ऐसे सर्वार सिद्धि वाले में यथा विशुद्धि को प्राप्त हुआ होता हुआ एक प्रमत्त संयत जीव पद्मलेशा के साथ रहा, अनंतर उपशम श्रेणी के योग्य विशुद्धि को बढ़ाता हुआ शुक्ललेशा वाला हो गया। अनंतर शुक्ललेशा वाला होने के प्रथम समय में जो औदारिक शरीर स्कंध निर्जीर्ण हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समय में अधक कर्म की आदि होती है और तीसरे समय से अंतर होता है। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान के हजारों परावर्तन करके अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह पुनः सूक्ष्म सांप्राय सुदीर्घ करना अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और अप्रमत्त संयत होकर प्रमत्त संयत गुणस्थान में सर्वोत्कृष्ट उक्त लेशा के काल तक रहकर यानी वो मैक्सिमम काल बिताया उसमें मरा और 33 सागर की स्थिति वाला देव हो गया। पुनः वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अनंतर वो तो वहां से मरेंगे तो शुक्ललेशा के साथ ही मनुष्य होगा। अनंतर शुक्ललेशा के सबसे उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल के अंतिम समय में पूर्व में निर्जीर्ण हुए नौकर्म स्कंधों के बंध को प्राप्त होने पर अधक कर्म का अंतरकाल उपलब्ध होता है। इस प्रकार अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 2 अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर होता है। ये ख्याल में आया? शुक्ल लेशा वाले के साथ यानी वो अंतिम अंतर्मूर्त 33 सागर में जाने के पहले उसने क्या किया था? पहले तो पद्म में से शुक्ल में आया तो शुरू करना है ना वहां से, तो औपशमिक समय दृष्टि हुआ वगैरह वगैरह पूरी श्रेणी उतर कर आया, तभी भी शुक्ललेशा ही रही उसकी क्योंकि शुक्ललेशा का काल बढ़ाना है और फिर बाद में 33 सागर की आयु करके फिर मनुष्य में उत्पन्न हुआ। प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के हजारों परिवर्तन करके उसने शुक्ललेशा शुरू हुई थी और छठे सातवें में हजारों बार आया हो। वो लेशा के उसके जो उत्कृष्ट काल है वहां तक रहा ऐसा लिया ना? इरियापद की अभी बात नहीं आई ना? अभी अच्छा ऊपर जो आई थी बात उसकी आपकी हाँ इरियापद की क्या बात पूछे? हाँ एक जीव के नहीं वो उसका दूसरे लेशा में चला जाएगा वो, नहीं तो अंतर अंतर बता देते उसी की अपेक्षा में बात कर रहे हैं। तो अंतर क्यों नहीं बताए यहाँ? अंतर नहीं बताया ना? हाँ कहाँ लिखा है यहाँ? अंतर नहीं है लिखा है ना? कैसे बराबर? तो हम तो सूत्र के अनुसार ही जाना चाहिए। अगर जा सकता था उन्होंने बता देते कि अंतर हो गया करके। अंतर नहीं है इसीलिए उनकी लेशा चेंज हो जाती है, यही सिद्ध होता है ना? लेशा का काल छोटा है, एक बार चढ़ के उतरा तो फिर बीच में होती होगी वो पद्मलेशा, नहीं तो अंतर बताते ना यहाँ पर। बताया नहीं ना, क्योंकि वहाँ क्या अभी हम जो घटित कर रहे हैं, वहाँ क्या श्रेणी चढ़ के उतरा और शुक्ल लेशा का जो मैक्सिमम काल है सातवें में आया है, अभी उसका शुक्ल लेशा का काल पूर्ण होने वाला है, तो वहाँ से उन्होंने अंतर घटित किया है। दोबारा श्रेणी चढ़ने के शुक्ल लेशा का इतना बड़ा काल नहीं है उनके, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है कहा ऊपर, पहले लाइन में बता दिया उन्होंने। हाँ नहीं, एक श्रेणी का नहीं, दो बार। हाँ दो बार यानी बीच में वो फिर पद्म फिर से शुक्ल हो जाएगी पद्म से। अभी हम आगे के पृष्ठ पर आए ना, चथोकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ 168। अनंत शुक्ल लेशा के सबसे उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल के अंतिम समय में पूर्व में निर्जीर्ण हुए नो, ये पढ़ा था हमने, अधक कर्म का अंतर प्राप्त होता है। इस प्रकार अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 2 अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर होता है। अब क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना होता है, वो है हुआ है करना उसे। नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, हमेशा ही वहाँ समय दृष्टि वो तो रहेंगे ही शुक्ल लेशा में। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल 5 अंतर्मूर्त कम 31 सागर है, क्योंकि क्रिया कर्म का अंतरकाल घटित करना है तो मिथ्या तो में लाना पड़ेगा नीचे या श्रेणी में ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, क्या करने है? समय के साथ उत्कृष्ट अंतर के लिए। हाँ देखो, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल 5 अंतर्मूर्त कम 31 सागर है। यथा 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक द्रव्यलिंगी जीव, ये द्रव्यलिंगी शुक्ल लेशा वाला होता है, वह यानी वो नवे ग्रह में नहीं जाने वाला है, उसकी बात चल रही, क्योंकि नवे ग्रहवेक में जन्मने वाले शुक्ल लेशा के साथ ही वहां जन्म लेते हैं, ऐसा नियम है उसका। उपरिम उपरिम ग्रहवेक के देवों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया और विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, क्रिया कर्म की आदि दिखाई दी, अनंतर सबसे स्तोक काल तक क्रिया कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो अंतर किया, अनंतर सबसे स्तोक जीवित के शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। इतना लंबा काल गया ना, अभी लास्ट में उसको उपशम सम्यक्त करना पड़े, क्रिया कर्म का ये दंड निकाल देना वहां का, फुल स्टॉप नहीं चाहिए, क्रिया कर्म का अंतरकाल उपलब्ध हो गया। इस प्रकार क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 5 अंतर्मूर्त कम 31 सागर होता है। लेशा रहित जीवों के, अब ये तो लेशा वालों की बात हो गई, अभी लेशा रहितों में देखो, जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त कैसे घटित करेंगे आप, शुक्ल लेशा है और क्रिया कर्म का अंतर करना है मिनिमम, केवली के क्रियाकर्म ही नहीं होते ना, एरिया पद नहीं, मैं पूछ रहे क्रियाकर्म पूछ रहे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, या वहां तो हम शुक्ल लेशा वाले नवे की बात करेंगे ना, मिथ्या तो में गए और वापस समय तो गए, या अभी हमने पहले जैसे देखा था कि सातवें गुणस्थान वाला पद्म लेशा वाला था, शुक्ल लेशा में गया और श्रेणी चढ़कर उतरा और फिर पद्म में आ गया, सॉरी पद्म में नहीं शुक्ल में, उस शुक्ल में जाने के पहले शुक्ल हुआ होगा ना, वो सातवें में शुक्ल था तो सातवें में था तब तक क्रियाकर्म था, आठवें में श्रेणी चढ़ गया तो क्रियाकर्म का अंतर हुआ और फिर वापस सातवें में आते ही शुक्ल लेशा तो चालू रही, और क्रियाकर्म चालू हो गया, यानी वो उसका क्रियाकर्म का अंतर घटित होगा। पहले हमने देखा था इस तरह से, एक बार पित में देखा था, कहाँ पित में नहीं, पित में हो नहीं सकता, ऊपर चढ़ के हमने घटित किया था अंतर। इसमें आया है देखो, ये अवधि ज्ञानी वगैरह जीवों में लिया था, 160 पृष्ठ पर देखा था। देखो नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो तो ऊपर तो नाना जीवों की बात है, और सातवें लाइन में एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यथा मिला। देखो एक अप्रमत्त जीव क्रियाकर्म के साथ स्थित है, पुनः अपूर्वकरण होकर उसने उसका अंतर किया, वहां तो उसको तो मरकर वो देव में हो गया, उसकी बात की थी, मरने की अपेक्षा जघन्य काल। परंतु हम यहां भी ऐसे ले सकते हैं, या शुक्ल लेशा के साथ वो अन्य गुणस्थान, नीचे के गुणस्थानों को गया फिर वापस आया, इस तरह से दोनों ही घटित होंगे। अभी अपने पृष्ठ पर आते 168 पर, लेशा रहितों की बात है। लेशा रहित कौन से जीव है? हाँ, अयोगी जीव। हाँ, लेशा रहित जीवों के, उनके कौन कौन से कर्म हो गए, प्रयोग कर्म होगा कि नहीं है? योग तो नहीं है, समवदान उदय, और उन्होंने सत्ता की अपेक्षा है कहा था, उदय बंध की अपेक्षा नहीं है, क्रियाकर्म तो नहीं हो सकता, इरियापद भी नहीं है, हाँ तप कर्म है, अभी ध्यान है ना वहां पर, इसलिए कहते हैं तप कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, क्योंकि 14वां गुणस्थान निरंतर नहीं होता, जैसे 13वां गुणस्थान है वो निरंतर है नाना जीवों की अपेक्षा, 14वें में गैप पड़ता है, 6 महीने 8 समय में वो 608 जो उसमें से चले जाते हैं, और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है, तो अधिक से अधिक 6 महीना का अंतर होता है, और रिमेनिंग जो 8 समय उसमें 608 जीव चले जाते हैं मोक्ष, उसमें से आकर एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, यानी 14 में है और फिर तप का अंतर हो जावे, ऐसी बात नहीं होती। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्य जीवों का भंग ओघ के समान है, सम्यक तो मार्गणा के ओघ के समान है, अभी भव्य जीव जो है जिस गुणस्थानों की अपेक्षा उसमें ले सकते हैं, भव्य जीव कौन से गुणस्थान में है वैसे उसके वो सभी कर्म उस पर घटित कर सकते हैं। सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से सम्यक दृष्टियों का भंग अवधि ज्ञानियों के समान है, इतनी विशेषता है कि इरियापद कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्षायिक सम्यक दृष्टियों के प्रयोग कर्म व समवदान कर्म और इरियापद कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, इतनी विशेषता है कि इरियापद कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। क्षायिक सम्यक दृष्टि में इरियापद का अंतर कैसे घटित करेंगे? उपशम श्रेणी चढ़ेगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़कर उतरेगा और वापस फिर श्रेणी चढ़ेगा, और उत्कृष्ट अंतर काल कुछ कम 2 पूर्वकोटि अधिक 33 सागर है। ऐसे क्यों कहा? कोई घटित करेगा? हाँ प्रतिभा ताई, देखो ये क्षायिक समय दृष्टि और किसका अंतर पूछ रहा है? इरियापद का। इरियापद कब होगा उसको? वो तो अभी अंतर सिद्ध करना है ना, तो ग्यारहवे वाला को लेना। तो पहला जो पूर्व कोटि का भव है, तो उसने अर्लीएस्ट यानी 8 साल के बाद उसने वो क्षायिक समय दृष्टि उसको लाना, पहले से नहीं ला सकते, उस विभव में क्षायिक समय दृष्टि लेना पड़ेगा। क्षायिक समय को प्राप्त किया, क्षायिक समय को प्राप्त करने के बाद उसने उपशम श्रेणी चढ़ी, तो ग्यारहवे में आकर फिर उसका अंतर चालू हो गया। भले वहां पर मरे तो भी नहीं, उसको पूर्व कोटि सिद्ध करना है, पहले पूर्व कोटि का अंतर चालू करना। ग्यारहवे पूरा उतर यानी उसका उपशम श्रेणी उतर कर नीचे आया, पूर्व कोटि तक संयम में रहा और फिर सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर पूर्व कोटि वाले में आया और उस पूर्व कोटि के भाव में अंत की ओर उसने श्रेणी क्षपक श्रेणी चढ़ी। पहले वाले पूर्व कोटि में उसने शुरू में श्रेणी चढ़ी थी और दूसरे पूर्व कोटि में अंत की ओर उसने श्रेणी चढ़ी। हाँ देखो अधिक 33 यह बता रहे हैं आगे। देखो यथा 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक देव या नार की जीव पूर्व कोटि की आयु वाले समय दृष्टि मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, यानी पहला पूर्व कोटि की बात चल रही है जिसमें वो क्षायिक प्राप्त करेगा। अब क्षायिक प्राप्त करने के लिए उसको देरी न हुए, इसलिए वो पहले से अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके आया हुआ है। ये देव और नार की भी अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर सकते हैं। अनंतानुबंधी का विसंयोजन है बहुत बार होता है, पल्ले के असंख्यातवे भाग बार। हाँ, जैसे सम्यक दर्शन पल्ले के असंख्यातवे भाग बार होता है, वैसे अनंतानुबंधी का विसंयोजन भी इतने बार हो सकता है। तो उसने अनंतानुबंधी इतने बार हो सकेगा यानी वो फिर दोबारा मिथ्यात्व में जाएगा और फिर अनंतानुबंधी बांधेगा, तो खाली सम्यक दर्शन चलता रहे और वो बार बार करता रहे ऐसी तो होगी नहीं बात है। तो देव और नारकी भी कर सकते ना, वहां से वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके मनुष्य में उत्पन्न हुआ है। उसका सम्यक तो कौन सा चल रहा है? वेदक सम्यक। तो उसकी 24 की सत्ता वाला हो गई और वो मनुष्य में उत्पन्न हुआ है, पूर्व कोटि की आयु वाले सम्यक दृष्टि मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर दर्शन मोनिय का क्षय करके अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त हुआ। अनंतर प्रमत्त हुआ यानी 8वें वर्ष में उसने क्षायिक समय को भी प्राप्त किया, संयम भी प्राप्त किया। अनंतर प्रमत्त हुआ, अनंतर प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान के हजारों परावर्तन करके अपूर्व करण अनिवृत्ति करण और सूक्ष्म सांप्राय होकर उपशांत कषाय हो गया। इसके इरियापद कर्म की आदि दिखाई दी। अनंतर सूक्ष्म सांप्राय होकर यानी अभी श्रेणी उतर रहा है और अंतर करके 10वां गुणस्थान प्राप्त होते ही इरियापद का अंतर शुरू हो गया। 33 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। अंतर करके यानी अभी वो पूरा पूर्व कोटि का भव उसने वो लिखा नहीं है, परंतु उसका पूर्व कोटि के अंत में वो देवों में उत्पन्न हुआ, यानी वो अंतर करके इमीडिएट नहीं गया है 33 सागर में। मरण की अगर अपेक्षा लेते तो वो पूर्व कोटि वाला भाव छोटा हो जाता, क्योंकि मरण कब करता? पूर्व कोटि वाला है तो मरण करता तो उसके आयु के अंत में करना पड़ा है। ये पूर्व कोटि लेने इससे फायदा नहीं, तो फिर 100 साल में भी जाता वो, ख्याल है ना? और ऊपर जाने वाले की वो उदीर्णा नहीं होगी, वो 11वें वगैरह में आयु का बंध तो वहां होता नहीं है, कदली घात से मरेगे नहीं, ख्याल आता है ना? हाँ, यानी पूर्व कोटि के बाद अंतर करके पूर्व कोटि के बाद तैतीस सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। ऊपर कुछ लिखा है कि डायरेक्ट ही लिखा है? डायरेक्ट ही लिखा है। एक को देव कभी अपमत बणी सोमो संत कस जादो एरिया वह कम्बस आदि बिठा तदो सोमो हो दो न अंतरीय। अच्छा इतना ही लिखा है, परंतु वो बीच की बात हम समझ लेंगे। और वहां से च्युत होकर, यानी अभी तैतीस सागर के देवों में से च्युत होकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। पुनः पूर्व कोटि में सबसे स्तोक अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर क्षीण कषाय हो गया, अंतरकाल उपलब्ध हो गया। इस प्रकार 11 अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष न्यून 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर इरियापद कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, ये समय क्षायिक समय दृष्टि के ही घटित कर रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। यथा अभी जैसे पहले घटित किया था वैसे यहाँ पर भी क्षायिक होते ही जो उसके पहले समय में अधिक कर्म करेगा उसको उसको लेना। 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव या नारकी जीव, एक जीव एक देव चाहिए। एक को देवो वा नेरियो वा 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक देव या नारकी जीव, जीव के ऊपर बिंदी हुए हाँ काल तो रहेगा उसका विसंयोजन करने के बाद। हाँ टिकेगा, क्योंकि क्या है फिर उसका विसंयोजन होने के बाद फिर दोबारा ऐसा तो उल्टा होने का कोई कारण ही नहीं है वहां पर। मिथ्यात्व में कोई जीव जाता है विसंयोजन के बाद तो फिर अनंतानुबंधी बांधेगा तब उसकी सत्ता में आएगा अनंतानुबंधी। वो जीव के बदले देव करो और आगे वाले जीव के ऊपर बिंदी लगी वो जी के ऊपर वो भी निकालना। फिर पढ़ती हूँ। 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक देव या नारकी जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर तीनों ही कर्णों को करके क्षायिक समय दृष्टि हो गया। ये जो पहले हमने देखी थी बात वैसे ही, वहां उन्होंने क्षायिक होने के बाद श्रेणी मान ली थी। अब यहाँ अधक कर्म को हमको घटित करना है। उस क्षायिक समय दृष्टि प्रथम समय में क्षायिक समय दृष्टि के ना के चाहिए कहिए सम्मा इट्ठीस उस क्षायिक समय दृष्टि के प्रथम समय में जो औदारिक परमाणु निर्जीर्ण हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समय में अधक कर्म की आदि होती है और तीसरे समय से लेकर कुछ कम पूर्व कोटि काल मात्र अंतर करके 33 सागर की, यानी वो अंतर शुरू हो गए ना तीसरे समय से, 33 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ और वहां से च्युत होकर भी पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और वहां सबसे जघन्य अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर क्षीण कषाय हो गया। अनंतर संयोगी के अंतिम समय में ये शरीर का ग्रहण कब तक चलता है? 13वें के अंत तक। हाँ तो संयोगी के अंतिम समय में पूर्व निर्जीर्ण औदारिक कर्मस्कंधों के बंधकों प्राप्त होने पर अधक कर्म का अंतरकाल उपलब्ध होता है। इस प्रकार अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल गर्भ से लेकर 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त न्यून 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। ये कैसे घटित किया उसको हमको सोचना है। तपक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। ये पूर्व कोटि पहले वाला लेना के बाद वाला लेना है? बाद वाला, क्योंकि पहले तो तप कर्म का अंतर कब शुरू होगा? जब यहाँ संयत मुनि जो है वो तो मरकर देव में चले जाते हैं। क्या क्या कहते पहले की बात? तो फिर तप कर्म के लिए अगर वैसा लेंगे तो वो 33 सागर में नहीं जाएंगे, और इसी यहीं पर फिर यहीं पर फिर लास्ट में वो तप धारण करेंगे तो उनका काल छोटा होगा। कहले ना, हमको उत्कृष्ट काल घटित करना है। यानी पहले पूर्व कोटि के अंत में वो मुनि अवस्था में यानी तप की अवस्था में वो वहां पहुंचे, तप का अंतर चालू किया कर दिया ना उन्होंने, क्योंकि श्रेणी चढ़े तो भी तप तो होता है उनके, तो तप का अंतर कब होगा? कि जो संयमी है वो चौथे में आएंगे, तो अभी वो संयम अवस्था में मरकर चौथे में आ गए, देव हो गए, 33 सागर तक वहां रहे, फिर वहां से लौटे यहाँ पर आ गए, चौथा ही गुणस्थान रहा या पांचवा भी किया तो भी अंत की ओर उन्होंने संयम धारण किया, तब ये तप कर्म का उत्कृष्ट अंतर शुरू होगा, ये समाप्त होगा उसका। क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। अब ये बताओ, क्षायिक है तो नीचे तो ला नहीं सकते उसको। क्रिया कर्म का अंतरकाल कब होगा? क्रिया कर्म कहां से कहां तक पाया जाता है? चौथे से लेकर क्रिया कर्म है सातवें तक अंतर कब होगा? श्रेणी में जाएंगे तो, ख्याल है ना, हाँ, सातवें से ऊपर। तो मुझे बताओ जघन्य अंतर किसका होगा और उत्कृष्ट किसके होगा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा। देखो जघन्य में जघन्य अंतर कब शुरू कैसा होगा? सातवें तक तो उसका तपक सॉरी क्रियाकर्म है, उपशम श्रेणी शुरू की उसने, और आठवें का पहला भाग होते ही मरण हो गया। हाँ, निद्रा प्रतला की बंध विच्युति होते ही अनंतर समय में मरण को प्राप्त हुए, तो देव में जाते यानी वो वहाँ देव में जाना देव गति शुरू हो गई, तो उनका क्रियाकर्म भी शुरू हुआ, तो छोटे में छोटा अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट कैसे घटित करेंगे? पूरी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरे, दोनों ही अंतर्मूर्त ही लिया है। हाँ, देखो जघन्य ऐसा है, तप कर्म सॉरी क्रिया कर्म की बात हो रही है, क्षायिक समय दृष्टि है, तो जब हम सामान्य से क्रिया कर्म का अंतर देखते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि या समय मिथ्या दृष्टि होता है, तभी भी वो अंतर हो सकता है। अब यहाँ अंतर करना है क्रिया कर्म का और उसका समय तो अभी छूटने का सवाल नहीं है, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ क्रिया कर्म नहीं है, तो है वो उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी क्यों वापस आना है ना, इसलिए उपशम श्रेणी लेना है। कौन सा? आठवें का। उसको जल्दी में जल्दी मरण कहाँ होता है उपशम श्रेणी में? तो आठवें का पहला भाग बीतने पर। समझ में आए? ग्यारहवें में भी मरे, नौवें में मरे, दसवें में मरे, परंतु हमको अर्लीस्ट चालू करना है ना, फिर जघन्य अंतर देखना है, तो आठवें का पहला भाग समाप्त होते ही मरण हुआ तो देव में चौथे में आए, तो उनका क्रियाकर्म शुरू हो गया और हाँ वो छोटे में छोटा अंतर्मूर्ति जो कुछ है वहां पर अंतर्मूर्ति गिनेंगे उसको भी कौन देव में भी उसका क्रियाकर्म चालू ही है। हाँ उसके आगे क्या होता है उसकी नहीं अपनी चिंता क्योंकि क्षायिक है ना तो अभी वो देव में से आकर मोक्ष ही जाने वाला है उस भव में से क्षायिक के ज्यादा भव नहीं हो गए। ये जघन्य कैसे घटित किया तो उपशमक के आठवें के दूसरे भाग के पहले समय में मरण होगा। हाँ उपशमक के पहले भाग के अनंतर समय में आठवें के और ये उत्कृष्ट अंतरकाल पूरी श्रेणी चढ़कर उतरा। हो ना वो पूरा ही अंतर्मूर्त होता है। अब आगे वेदक सम्यक दृष्टियों में घटित करेंगे। वेदक सम्यक दृष्टियों के प्रयोग कर्म समवदान कर्म और क्रिया कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि बना रहे और क्रियाकर्म का अंतर हो ऐसा हो सकता है। क्षायिक में तो हमने घटित किया वेदक में क्यों नहीं होगा। हाँ श्रेणी चलेगा या तो उपशम वाला होता है या क्षायिक वाला होता है तो वेदक के साथ तो चौथे से सातवें गुणस्थान ही होते हैं और उन गुणस्थानों में क्रियाकर्म होता ही है इसलिए वेदक सम्यक दृष्टि जो है उसको क्रियाकर्म का अंतर नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है। अभी अधक कर्म का अंतर कैसे घटित करेंगे वेदक सम्यक तो प्राप्त करने पर जो उसने अंतर किया है शुरू में और जब वेदक सम्यक तो का मैक्सिमम काल लेना जो इसका अंतर सिद्ध होगा अभी हम देखेंगे उसको। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है ये तो हमने हर समय हर बार एवरीवेयर ने घटित किया था और उत्कृष्ट अंतर काल कुछ कम 66 सागर है। कुछ कम क्योंकि वो वैदिक समय दर्शन प्राप्त करने पर उसने जो निर्जीर्ण किए थे वो तीन समय के बाद अंतर शुरू हुआ और वैदिक समय तो जब तक है उसके अंतिम समय में उसने फिर ग्रहण किया तो पहला भी भव मनुष्य 3 इंच का लेना पड़ेगा और हाँ वो तो यथा योग्य होगा और उसमें से जितना देव ऐसी लेनी आयु कि लास्ट में वो मनुष्य में आना चाहिए। अधक कर्म फिर ग्रहण करेगा उसका अर्थ क्या होता है वो औदारिक होना चाहिए उसके मनुष्य में आना चाहिए उसके 3 इंच में नहीं वैदिक सम्यक्त्व के साथ वो कैसा जाएगा 3 इंच में। शुरू में भले उसको ले लो 3 इंच में चलेगा अंत में तो मनुष्य में ही लाना पड़ेगा। तपक कर्म के अंतरकाल का विचार सम्यक दृष्टियों के समान है जो हमने सामान्य सम्यक दृष्टि की बात की थी वैसे यानी वो नीचे के चौथे तक के गुणस्थानों में आया। तप कर्म जो है संयत में से नीचे के चौथे पांचवे में आया तो उसका अंतर सिद्ध हो जाएगा। उपशम सम्यक दृष्टियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है। देखो उपशम सम्यक तो ये जो मार्गणा है वो सांतर मार्गणा है उसमें निरंतर जीव नहीं पाए जाते हैं नाना जीवों की अपेक्षा उसमें अंतर पड़ता है इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कहा यहाँ। अन्य मार्गणाओं में हम नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं ऐसा देखते हैं ना जैसे क्षायिक समय दृष्टि हमेशा हो गए ही कहीं ना कहीं और वेदक समय दृष्टि भी पाए जाएंगे परंतु उपशम समय दृष्टि हो सकता है कि कहीं पर भी पूरे 3 लोक में उपशम समय दृष्टि है ही नहीं उतने समय तक। और उत्कृष्ट अंतरकाल 7 रात्रि दिन है ये यानी सात दिन और रात के बाद कोई ना कोई उपशम समय दृष्टि होगा ही, यह अधिक से अधिक अंतर है। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो उपशम समय तो बना रहे और प्रयोग कर्म उसका या समाधान कर्म छूट जाए ऐसी बात नहीं होती। इसी प्रकार क्रिया कर्म का अंतरकाल है, इतनी विशेषता है कि एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। ये कैसे घटित करेंगे? नहीं नहीं तो वो फिर अंतरकाल कैसे घटित करेंगे? देखो द्वितीय उपशम के काल में सातवें वाले को क्रियाकर्म है और फिर उपशम श्रेणी चढ़ा, द्वितीय उपशम सम्यक तो चालू रहा और फिर श्रेणी चढ़कर फिर उतरा। जगन्य भी और उत्कृष्ट भी जो कुछ है, और अच्छा जगन्य घटित करना है तो द्वितीय उपशम में मरकर वो द्वे में चला गया तो क्रियाकर्म शुरू हो गया। द्वितीय उपशम में तो मरण हो सकता है, तो मरने की अपेक्षा जघन्य होगा उसका और उत्कृष्ट काल में पूरी श्रेणी चढ़कर नीचे आया। फिर ये लिखा तो नहीं है यहाँ पर, परंतु वही घटित होगा। ये दो प्रश्न हो गए। हाँ देखो उपशम समय दृष्टि इतना ही कहा है, उसमें जो कोई प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम दोनों में होगा वो दोनों ही यहाँ घटित हो सके। हम तो वो प्रथमोपशम की अपेक्षा विचार कर रहे हैं ना, अरे उसमें से कैसे क्या अंतर घटित होगा ऐसे ही सोच रहे थे। देखो नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, सॉरी किसकी बात चल रही है? अधक कर्म का। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। उपशम सम्यक्त्व का जो काल है अंतर्मूर्त वाला, उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते ही उसने जो औदारिक शरीर के परमाणु निर्जीर्ण किए थे आहार वर्गणा के, तो फिर उसका अंतर हो गया और उपशम सम्यक्त्व के अंत समय में फिर दोबारा ग्रहण किए। तपक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 15 रात्रि दिन है। तपकर्म का अंतर कैसे होगा? हाँ नाना जीवों की अपेक्षा शांतर है, इसलिए यानी शांतर तप उपशम सम्यक और तप कर्म। ऐसे भी ले सकते हैं ना कि उपशम प्रथम उपशम के साथ संयम प्राप्त करने वाला, ऐसा ले सकते हैं? हाँ तो प्रथम उपशम के साथ संयम जिसने प्राप्त किया है वो नाना जीवों की अपेक्षा घटित होगा। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, जैसे हमने पहले घटित किया था। इर्यापत कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है। ये तो उपशम श्रेणी मानने वाले अलग अलग जीव उसकी अपेक्षा बात है, एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। यानी वो एक बार द्वितीयोपशम करने के बाद दो श्रेणी नहीं होगी उसकी, यही अर्थ निकलता है ना? क्या निकलता है? सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों के द्वितीयोपशम की अपेक्षा नहीं समझेंगे हम, वह प्रथमोपशम प्लस संयम ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब अंतर कहते तो प्रथम उपशम द्वितीय उपशम ऐसा नहीं वहां लेते हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है, वो देखना पड़ेगा। 15 रात्रि वो संयम की अपेक्षा से बताए, प्रथम उपशम विथ संयम। वो उसमें अंतर में अपना अंतर वाली जो प्ररूप है ना, पांचवा भाग उसमें देख लेना आप। लब्धिसार में अंतर का कहां प्रश्न है? पांचवा पुस्तक अंतर की बात है यहां पर। ये इसमें भी आएगी बात, समय ज्ञान चंद्रिका के अंत में, अभी मेरा हुआ नहीं वहां तक। ये सांतर मार्गणा में होगा, मगर कितना अंतर होता है नाना जीवों की अपेक्षा, वो अंतर के प्ररूपणा में ही होगा, पांचवी पुस्तक में। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी देखना है क्या? नहीं तो कल देख के आना आप। होमवर्क भी थोड़ा चाहिए ना, क्या नहीं चाहिए? देवेंद्र भाई देखेंगे। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रयोग कर्म और समाधान कर्म का अंतरकाल कितना है, ये तीसरे गुणस्थान की बात है। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये तीसरे गुणस्थान का ही अंतर उन्होंने उन कर्मों के लिए भी बताया। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, उसका काल ही एक अंतर्मूर्त है ना छोटा। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। ये कौन सा वाला अंतर्मूर्त लेना? तीसरे गुणस्थान वाला अंतर्मूर्त लेना। हाँ, एक अंतर्मूर्त ही उसका काल है। सासाधन सम्यक दृष्टियों के इसी प्रकार कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम छह आउली है। संगी मार्गणा के अनुवाद से अब ये सासाधन सम्यक दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा ये प्रयोग कर्म समवदान कर्म में कितना अंतर होगा? हाँ विनोद भाई, आप कह सकते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न है, सासाधन सम्य दृष्टियों में नाना जीव के अपेक्षा से प्रयोग कर्म समवदान कर्म का अंतर कितना है? आप क्या कहते हो मयंक भाई? कुछ नहीं कहते। देवेंद्र भाई क्या कहते हैं? अंतर नहीं है, कम से कम अंतर एक समय और अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात भाग है, क्योंकि वो सांतर मार्गणा है। ख्याल है ना? अभी वो क्या लिखा था, इसी प्रकार कहना चाहिए। सांतर मार्गणा में तीसरा गुणस्थान भी और दूसरा भी है, दोनों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात भाग है। डिफरेंस कहाँ है? एक जीव की अपेक्षा में डिफरेंस है। अधक कर्म में वहां जो काल कहा था अंतर्मूर्त ही काल है तो उसको तीन समय कम करना उसमें से वो अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतर वहां उतना था। अब दूसरे गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? छे आवली। तो छे आवली में से तीन समय कम करेंगे वो अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतर हो सकेगा वहां पर। यानी सासाधन में आया वहां पर जो औदारिक परमाणु उसने निर्जीर्ण किए, दूसरे समय में औदारिक रूप से रहे, तीसरे समय में अंतर शुरू हो गया और अंत सासाधन के अंतिम समय में फिर ग्रहण किए, उसमें डिफरेंस है क्योंकि काल का दोनों का अलग अलग है। सासाधन का काल अधिक से अधिक छह अवली है और तीसरे गुणस्थान का अधिक अधिक उसके यथायोग्य अंतर्मूर्त है, इतना ही दोनों गुणस्थानों में डिफरेंस है। आपका ऐसा प्रश्न है कि सासाधन गुणस्थान में अंतर पड़े अधिक से अधिक तो पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण अंतर पड़ता है और उपशम सम्यक्त्व में अंतर पड़े, उत्कृष्ट अंतर पड़े नाना जीवन की अपेक्षा तो सात दिन रात्रि है ना, और यहाँ 15 दिन वो संयम की अपेक्षा उन्होंने बताया, यानी 7 दिन में कोई ना कोई उपशम समय दृष्टि होगा ही होगा, यानी सभी उपशम समय दृष्टि सासाधन में नहीं आएंगे। अब संगी मार्गणा के अनुवाद से संगियों का भंग चक्षु दर्शन वालों के समान है, असंगियों का भंग मिथ्या दृष्टियों के समान है, न संगी न असंगी जीव, ये कौन से है प्रतिभाता ही पता है हा? सिद्ध भगवानों में ये मार्गणा घटित नहीं होती, 13वां और 14वां दोनों लेना, यानी मन के द्वारा जानना नहीं है ना उनका। देखो यदि हम जीव समास की बात करेंगे तो उनको क्या कहेंगे 13वें 14वें वालों को? संगी पंचेंद्रिय कहेंगे भाई, जीव समास को एक कॉलम में अगर हमको लिखना है तो हम कहेंगे संगी पंचेंद्रिय। इंद्रिय मार्गणा कहेंगे तो क्या कहेंगे? पंचेंद्रिय। हाँ, और त्रस मार्गणा में तो ये छकाय में हम त्रस कहेंगे, और यहाँ जो संगी मार्गणा में क्या कहेंगे? संगी असंगी से रहित यानी अनुभव कहेंगे उनको, है ना? मार्गणा कौन सी चल रही है वैसे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ कहते हैं न संगी न असंगी जीवों के सब पदों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि 13वां गुणस्थान हमेशा ही है इसलिए अंतरकाल नहीं है। और एक जीव की अपेक्षा अगर हम कहते हैं अंतर कब होगा कि वो कोई जो विशिष्ट कर्म है वो कम हो जाएगा और फिर वापस आए तो अंतर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा उसमें। इतनी विशेषता है कि हाँ अधक कर्म का अंतर हो सकता है कि अधक कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, यानी केवली ने जो 13वें गुणस्थान में घटित होगा, 13वें के प्रथम समय में जो निर्जीर्ण हुए और एक समय में वो अन्य अवसर रूप से होकर फिर उसको ग्रहण किया तो वो एक समय जघन्य घटित होगा और उत्कृष्ट कैसे घटित होगा? अंत में वो जो ग्रहण करेंगे उसको। 8 वर्ष की बात नहीं है, हाँ अधिक से अधिक कितनी आयु आपने 13वें गुणस्थान की मैक्सिमम लिमिट ले ली उसमें। देखो इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्वकोटि है। ये कुछ कम पूर्वकोटि जो 13वें गुणस्थान का मैक्सिमम काल हम घटित कर सकते हैं उसको लेना, ये दिया है आगे। यथा एक देव या नारकिक क्षायिक समय दृष्टि जीव पूर्वकोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, क्षायिक करके ही लाया क्योंकि यहाँ वो क्षायिक में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है उसको, डायरेक्ट क्षपक श्रेणी वगैरह मानना है ना। गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर अधप प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण करके, ये लिखा तो डायरेक्ट अपूर्वकरण करके, अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त हुआ, यानी वो क्षायिक समय दृष्टि है, चौथा गुणस्थान है उसका, और चौथे में से दो करण मांड कर ही वो संयमी हुआ। क्षायिक तो उसका सम्यक तो है, हाँ, क्षायिक सम्यक तो के साथ आया हुआ है। अब उसका गुणस्थान चौथा है, अब उसको संयम धारण करना है, तो दो करण परिणामों में उसका संयम प्राप्त हुआ, पुनः प्रमत्त हो गया, यानी उसमें भी एक अंतर्मूर्त बचाया। अनंतर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के हजारों परावर्तन करके अपूर्व करण अनिवृत्ति करण। अब यहाँ जो ये करण करण लिखा है, ये श्रेणी की बात है। पहले जो लिखे थे वो तो संयम धारण करने के पहले वाले जो दो करण होते हैं। देखो ये जब जब ये विशुद्धि बढ़ती है, ये तो करणानियोग तो करण की भाषा में ही कहेंगे, उसने दो करण मांडे या तीन करण मांडे। गुणस्थानों का जो ऊपर चढ़ना होता है ये करण परिणामों के द्वारा होता है। करण परिणाम क्या बताते, विशुद्धि एकदम बहुत तीव्रता से बढ़ रही है और उसके कारण वहां ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त होता है। तो अब क्या किया उसने, अपूर्व करण अनिवृत्ति करण सूक्ष्म सांप्रार क्षीण कषाय होकर सहयोगी हो गया। हमें सहयोगी में वो अंतर घटित करना है ना अधक कर्म का। पहली बार पहले जो बात की लिखी ना, अधप प्रवृत्त करण और अपूर्व करण, वो संयम धारण करने के पहले दो करण मांडे थे उसकी बात है, करण परिणाम है वो। और बाद में जो अपूर्व करण अनिवृत्ति करण हुए वो गुणस्थान है, सहयोगी हो गया। तदनंतर सहयोगी के प्रथम समय में जो औदारिक शरीर के नौ कर्म स्कंध निर्जीर्ण हुए उनकी अपेक्षा दूसरे समय में अधक कर्म की आदि होती है, उसकी अपेक्षा से वो दूसरा समय लेना। और तीसरे समय से अंतर हुआ, यानी दूसरे समय में हमने उसको अधक कर्म कहा उस परमाणु को, और तीसरे समय में उन्होंने वो उसकी अवस्था बदल गई तो अंतर शुरू हुआ। सहयोगी के अंतिम समय में पूर्व निर्जीर्ण स्कंधों के बंधकों प्राप्त होने पर अधक कर्म का अंतरकाल उपलब्ध होता है। इस प्रकार अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल गर्भ से 8 वर्ष और 3 समय 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्वकोटि होता है। पहले वो जो संयम धारण करने के, यानी वो क्षपक श्रेणी चढ़कर सहयोगी होने के पहले वाला काल लिया, और अंत में 14वें गुणस्थान वाला भी काल 1 अंतर्मुहूर्त उसमें से कम करना पूर्वकोटि में से। अब आहार मार्गणा, आहार अभी हमने संगी मार्गणा देखी थी। आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारकों का भंग ओग के समान है, जैसे हमें गुण सामान्य पे देखा था वैसे यहाँ पर घटित करना। अनाहारकों का भंग कार्मण का योगियों के समान है, इस प्रकार अंतर चाहिए, अनंतर हुआ है, अंतर अनियोग द्वार समाप्त हुआ। ये हमने कार्मण का योगियों की बात देखी थी पहले। हाँ हाँ, ये अनाहारक कहाँ कहाँ सिद्ध होंगे, यानी कहाँ कहाँ होते अनाहारक। हाँ, विग्रह गति में जहाँ कार्मण का योग होता है और 14वें गुणस्थान में, वहाँ कौन सा योग होता है? वहाँ योग नहीं होता। और केवली समुद्घात में जहाँ कार्मण का योग होता है 3 समय के लिए, वहाँ भी अनाहारक है। हाँ। अब भावान योग की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये भाव अनुयोग द्वार चलेगा। अभी तक कौन कौन से देखे याद है? पहले सत, उसके अस्तित्व सिद्ध किया, यानी ये इतने कर्म होते हैं ऐसा बता दिया। फिर संख्या, उसको द्रव्य प्रमाणानुगम कहते हैं। क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर। अब भाव और अल्प बहुत्व रह गए, तो उसमें से भावानुगम चलेगा, भाव अनुयोग द्वार। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से प्रयोग कर्म का कौन भाव है? क्षावक्षमिक भाव है। ये 5 भावों में से कौन सा भाव है प्रयोग कर्म का, वो बात पूछ रहे हैं। योग वाला जीव है ना यहाँ पर, योग वाला जीव को कहा यहाँ पर, उसमें क्षयोपशमिक भाव घटित किया। समवधान और अधकर्म का कौन भाव है? औदयिक भाव है। इरियापद कर्म का कौन भाव है? औपशमिक भाव है या क्षायिक भाव है? तपक कर्म और क्रिया कर्म का कौन भाव है? औपशमिक भाव है या क्षायिक भाव है या क्षायोपशमिक भाव है? देखो तपक कर्म कहाँ से शुरू होते हैं? संयमों, संयतों में होते हैं, तो संयतों के तीनों ही भाव घटित होते हैं। और क्रिया कर्म सम्यक दृष्टियों के होते हैं, वहां भी तीनों भाव घटित होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक एक इसमें किसमें घटित करना है वो बताते हैं। ये तो पहले सामान्य से बता दिए कौन से कर्मों में कौन से भाव होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, मनुष्यत्रिक में मनुष्य यानी सामान्य होते हैं उसमें, फिर पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, और अपर्याप्त मनुष्यों के यहाँ नहीं लिया है, छोड़ा ले। मनुष्यत्रिक, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, औदारिक काय योगी, आभिनिर्बोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, कौमा लगाना, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, भव्य सिद्ध, सम्यक दृष्टि, संगी और आहारक जीवों के कहना चाहिए, यानी इन जीवों में इन कर्मों का ऐसा ही कथन होगा। विशेषार्थ बताते हैं। हाँ, कौमा चाहिए, दंड के बदले कौमा करना। अभी इसी का विशेषार्थ बताएंगे। प्रयोग कर्म में तीनों योग लिए गए हैं जो क्षयोपशमिक होते हैं। इससे यहाँ प्रयोग कर्म का क्षयोपशामक भाव कहा है, क्षयोपशमिक चाहिए। यद्यपि संयोग केवली के ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता, परंतु पूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा योग को क्षयोपशमिक मानकर उसका एक क्षयोपशमिक भाव ही लिया गया है। देखो क्या कहना चाहते हैं, संयोग केवली में भी प्रयोग कर्म तो है, तो उनके तो क्षायिक भाव है, फिर भी जैसे केवली को योग क्यों कहा है, मनोयोग क्यों कहा है, लेशा क्यों कही है? लेशा तो हम कषाय से अनुरंजित योगों के परिणाम जो कहते हैं, तो वहां तो कोई कषाय है ही नहीं है, फिर भी लेशा क्यों कही? तो उपचार से, ये इसको कहते हैं पूर्व प्रज्ञापन नय, पहले था उसका ज्ञान कराने के लिए। वैसे यहाँ पहले योग जो है वो क्षयोपशमिक भाव है और उनके योग पाया जाता है, क्षयोपशमिक भाव नहीं है, ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम तो है ही नहीं है, फिर भी पूर्व में था इसलिए यहाँ इनको भी कह देते हैं। तो योगों में एक क्षयोपशमिक भाव ही उन्होंने घटित किया। समवधान कर्म में ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध, उदय और सत्व के भेद विवक्षित है, यथा इनमें उदय की प्रधानता है। इसलिए समवधान कर्म का औदयिक भाव कहा है, यानी उदय की अपेक्षा उसको औदयिक भाव कहा। अधक कर्म औदारिक नाम कर्म के उदय में होता है, अतः इसका औदयिकपना स्पष्ट ही है। इरियापद कर्म का उपशम श्रेणी की अपेक्षा औपशमिक भाव और क्षपक श्रेणी की अपेक्षा क्षायिक भाव कहा है। तपक कर्म में क्षयोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक तीनों प्रकार का चारित्र संभव होने से तथा क्रिया कर्म में तीनों प्रकार का सम्यक तो संभव होने से तप में चारित्र लिया, औपशमिक चारित्र, क्षौपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र। और क्रियाकर्म में तीन प्रकार के सम्यक तोलिए, इन दोनों का औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक ये तीन प्रकार का भाव कहाँ है। यहाँ और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें सब कर्मों के उक्त भाव संभव होने से इनका कथन ओघ के समान कहा है। ये कर्मों पर जो घटित किया है वो वहाँ उन मार्गणाओं में भी यही घटित होता है। अब ये आदेश की अपेक्षा बताएंगे, गति में वगैरह इंद्रियों में उसकी बात करेंगे। नरक गति में नारकियों में अपने अपने पदों का भंग ओघ के समान है। अभी हम यहाँ अंतर नहीं देख रहे, भाव देख रहे हैं, यानी वहां जितने भंग पॉसिबल है, कौन कौन से यहाँ कर्म पॉसिबल है नरक में, पहले हम देखते हैं। प्रयोग कर्म होगा कि नहीं, हाँ, समवदान वो भी है, और अधकर्म नहीं है, क्रिया कर्म है, तप कर्म भी नहीं और इरियापद भी नहीं है, तो ये जो है तो ये ओग के समान उसके भंग ये हो गए। यानी उनके लिए कोई प्रयोग कर्म कुछ अन्य भाव नहीं होगा, उसको भी क्षौपशमिक कहेंगे। ख्याल में ना, ये क्या कहना चाहते हैं, समवदान के लिए औदयिक कहेंगे और क्रिया कर्म के लिए क्या कहेंगे, क्षौपशमिक। तीनों हो गए, पहली पृथ्वी में तो क्षायिक भी है, हाँ, और अन्यथा वो तो उपशमिक तो सभी जगह प्रथम उपशम होता है, ख्याल आए ना किस तरह से लेना। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, पहली क्योंकि वो पहली पृथ्वी में भी वो क्षायिक घटित होता है, इसलिए वहां भी ले लेना। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। नवरी विशेष हम कहते ना हमेशा, इतनी विशेषता, श के ऊपर वो काना देना, कि इनके क्रियाकर्म का क्षायिक भाव नहीं होता, ये ख्याल में आया। इसलिए पहले हम सोचे ना तो बाद में ये ज्यादा अपना पक्का हो जाते, भले भूल भी करे तो भी कोई बात नहीं। अब पहले नरक में होता है, इसलिए दूसरे से सातवें नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि होते नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद ही सम्यक तो होता है किसी को। पहले नरक में क्षायिक होता है ना, वो मनुष्य में से लेकर आता है, इसलिए होता है कहां, ख्याल है ना, यानी वहां पाए जाते हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि। और नीचे के, हाँ, वहां जाने के बाद किसी को औपशमिक होगा यानी प्रथम औपशम, और किसी को वेदक होगा, सम्यक के साथ कोई वहां पैदा नहीं होंगे। अब तिर्यंच गति में, अब ये तो आसान है ना भाव वाला। तिर्यंचों में तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के अपने अपने पदों का भंग ओग के समान है। अब तिर्यंचों में कौन से पद हो गए उसको पहले देखेंगे हम। प्रयोग कर्म होगा, वो तो अभी उसके कौन सा भाव है वो तो क्लियर है। समवदान कर्म होगा, क्रिया कर्म कौन कौन से हो सकता है तिर्यंचों में, इन जनरल हम पहले बात करते हैं। हाँ, तीनों हो गए। हाँ, योनिनी में क्षायिक नहीं होगा, और एक क्षायिक किसके, कहाँ के तिर्यंचों को होगा, भोगभूमि के, और उसका गुणस्थान कौन सा होगा, चौथा ही होगा। इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यंचों में क्रियाकर्म का क्षायिक भाव नहीं होता, ख्याल में आया ना अभी, क्योंकि क्षायिक किसको होगा, जो क्षायिक लेके मनुष्य में से वहां जन्मेगा, जिसने सम्यक्तों के पहले तिर्यंच आयु बांधी है, तो जो सम्यक्तों के साथ उत्पन्न होता है तो स्त्री में उत्पन्न नहीं होगा, वो तो पुरुष वेद सहित वहां उत्पन्न होगा तिर्यंचों में। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म का भंग ओग के समान है। ये तो आसान है ना अभी, देखो प्रयोग में तो हम क्षौपशमिक भाव लगाते हैं, समवदान में उदय की अपेक्षा उदयिक भाव लगाते हैं, और अधक कर्म भी औदयिक भाव है। इसी प्रकार त्रस अपर्याप्त, सभी एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पांच स्थावर काय, तीन अज्ञानी, मनुष्य अपर्याप्त, अभव्य, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सब मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इनमें ये तीन ही कर्म पाए जाते हैं। इसलिए देवगति में देवों में अपने अपने पदों का भंग ओग के समान है। सौधर्म ऐशान स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक रहने वाले देवों में पहली पृथ्वी के समान कथन है। पहली पृथ्वी के समान है, वहां को क्षायिक भी है ना, इसलिए उसको लिया। हाँ, भवनवासी वानवेंतर और ज्योतिष देवों के दूसरी पृथ्वी के समान भंग है। औपशमिक और वेदक पाया जाएगा वहां पर। हाँ, क्षाउपशमिक भाव और औपशमिक क्रिया कर्म में वहां अधक कर्म होगा कि नहीं होगा? देवों में नहीं पाया जाएगा। अब योग मार्गणा के अनुवाद से औदारिक मिश्र का योगी जीवों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म का विचार ओग के समान है। अभी औदारिक मिश्र अवस्था ये तो अभी समझ में आए ना, क्योंकि योग ये तो भाव तो घटित करना है अपने को खाली। तो प्रयोग कर्म जो है वो क्षाउपशमिक है, समवदान है वो औदयिक है, और अधक कर्म है वो भी औदयिक है। अब इरियापद कर्म और तपक कर्म का कौन सा भाव है, किस में लेना है? औदारिक मिश्र में। औदारिक मिश्र के साथ इरियापद किसके होगा? तेरवे गुणस्थान, वो तो क्षायिक भाव है वहां के। हाँ, और औदारिक मिश्र के साथ तपक कर्म भी किसके होगा? उन्हीं को होगा, कपट समुद्धात वाले को। इसलिए दोनों में क्षायिक भाव घटित किया। औदारिक मिश्र वाले की बात है इसलिए। हो क्रिया कर्म का क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। इसका अर्थ समझ में आता है? क्रिया कर्म का कौन सी अवस्था में चल रही बात? औदारिक मिश्र की अवस्था। वैक्रेक मिश्र में क्रिया कर्म के कौन कौन से भाव होंगे? तीनों है, और औदारिक मिश्र में दो ही है। क्यों? हाँ, क्योंकि वैक्रेक मिश्र में जब हम लेते हैं तो द्वितीयोपशम में मरने वाले जो मुनि है उनके वो वहाँ औपशमिक है, वैक्रिक मिश्र अवस्था में है ना, द्वितीयोपशम चल रहा है। अब यहाँ औदारिक मिश्र में कौन से लेना है? मनुष्य तिर्यंच है, तो वो कोई से द्वितीयोपशम में कोई मरता नहीं है जो मनुष्य में आवे, ऐसा कोई हो सकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर वेदक वाले, हाँ, यानी कोई वेदक सम्य दृष्टि है देव या नारकी मरकर मनुष्य में आए तो हम कहेंगे औदारिक मिश्र के साथ वो क्षाउपशमिक भाव है क्रिया कर्म का, और क्षायिक के साथ आए तो क्षायिक भाव घटित होता ही है। तो औदारिक मिश्र में जो क्षायिक भाव घटित होता है और क्षायोपशमिक भाव घटित होता है उसमें हम गति लगाएंगे। औदारिक मिश्र में क्षायिक भाव किसके होगा? भोग भूमि के तिर्यंचों को। और क्षायोपशमिक भाव नहीं, अभी तिर्यंचों को नहीं होगा, अभी वो कृतकृत्य वाला लेना है तो ले सकते हैं, परंतु उसमें भी वो तो क्षायिक होने जा रहा है, उसमें भी वो क्षयक्षम घटित नहीं होगा उसमें, ख्याल में ना। इस तरह से हमें सोचना है उस पर। हाँ, वैक्रिक कायोगी और वैक्रिक मिश्र कायोगी जीवों का विचार सहस्रार कल्प के समान है। इस सहस्रार को क्यों लिया बीच में? आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों के प्रयोग कर्म, ये बराबर करना, प्रयोग हुआ है, प्रयोग कर्म आहार काय हो गया, आहारक, हाँ आहारक करना, हाँ क रह गया बीच में। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों के प्रयोग कर्म और तप कर्म का क्षौपशमिक भाव है। प्रयोग कर्म तो सब जगह क्षौपशमिक ही लिया है और तप कर्म में क्षौपशमिक भाव, क्षौपशमिक चारित्र है ना उनका, चारित्र लेना, सम्यक तो नहीं लेना, तप कर्म में क्षौपशमिक चारित्र लेना है। क्षायिक चारित्र कब होगा? क्षपक श्रेणी में। तो क्षपक श्रेणी में तो आहारक का योग नहीं होता है, ख्याल में ना। क्रिया कर्म में हम सम्यक तो लेना और तप कर्म में चारित्र लेना, चारित्र का क्षायिक क्षायोपशमिक या औपशमिक भाव लेना। प्रतिवत एक ख्याल में आता है? नहीं, देखो फिर से दोबारा। तप कर्म किसको होता है? संयतों को होता है। तो जब संयत यानी मुनि राजों को होता है तो उसमें जब कौन सा भाव है पूछेंगे तो कौन सा सम्यक दृष्टि है वो नहीं समझना। ये अभी जो आहार का योगी की बात की तो आहार किसको होगा, आहार शरीर बनाते वगैरह है तो उसमें तो या तो क्षाय वेदक समय दृष्टि होगा या क्षायिक समय दृष्टि होगा, परंतु तो वो सम्यक्त्व कौन सा है वो भाव नहीं घटित करना। उनका चारित्र कौन सा है तो छठे सातवें वाले को कौन सा चारित्र भाव होता है? सकल चारित्र बराबर है, परंतु क्या वो उन्होंने औपशमिक किया है? वो उपशम श्रेणी में उपशम चारित्र होता है और क्षपक श्रेणी में क्षायिक चारित्र होता है। उनके कौन सा होगा? सराग सम्यक्तों को हम किस में लेते हैं? वो सराग चारित्र को, सम्यक तो नहीं, सराग चारित्र, क्षौपशमिक चारित्र, क्षौपशमिक भाव में लिया ना, वो यहाँ घटित करना है। यानी जब तप कर्म की बात आएगी तो चारित्र कौन सा है उनका, क्षौपशमिक है, क्षायिक है या औपशमिक है, उसको लेना। और क्रिया कर्म की जब बात आएगी तो सम्यक्तों कौन सा है उसका विचार करना। क्योंकि अभी हमने ऐसे विचार किया ना, आपको भी ऐसा प्रश्न आया था अश्विन भाई को, क्या क्षायिक समय दृष्टि आहारक का योग वाले नहीं होते? सम्यक दर्शन क्षायिक है, परंतु तप कर्म में हमको चारित्र पर भाव घटित करना है। डिफरेंस ख्याल में है ना? हाँ, भावों में तो ऐसे ही घटित करना है। अब देखो, समोदान कर्म और अधक कर्म का औदयिक भाव है। अब क्रिया कर्म का क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। अभी मेरा ऐसा प्रश्न है, या औपशमिक भाव क्यों नहीं लिया? हाँ, आपको मालूम है प्रतिभात है, चार चीजें नहीं होती है। याद है कौन कौन सी नहीं होती? हाँ, मन परे ज्ञान, परिहार विशुद्धि, औपशमिक सम्यक्त्व और आहारक का योग। ये चार बातें एक साथ नहीं होगी, एक कोई होगी उसमें से, अन्य तीन नहीं होगी। जैसे जब मन परे ज्ञान है, अभी आहारक का योग चल रहा है, तो उस समय वो मन परे ज्ञान नहीं होगी उनके। औपशमिक सम्यक्त्व का काल है तब आहारक का योग नहीं होगा, यानी एट अ टाइम दोनों नहीं होगे। उपयोग रूप मनोपर्य लेना, यानी मनोपर्य ज्ञानी हो गए वो, परंतु उपयोग रूप अवस्था में ये नहीं हो गए। इसलिए क्रिया कर्म में क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव लिया है। किसके? आहारक का योग वालों के और आहारक मिश्र वालों के। अब ये हो गई आहारक वालों की बात। अब कारमान का योगी जीवों का विचार ओघ के समान है। कारमान का योग कब होता है? हाँ, विग्रह गति में और समुद्घात केवली में, है ना? तो विशेषता क्या है उसमें? इनके इरियापद कर्म और तप कर्म का एकमात्र क्षायिक भाव है, क्योंकि तेरहवें वालों को होता है। ये विशेषार्थ ये नीचे दिया ही है। औदारिक मिश्र का योग में इरियापद कर्म और तप कर्म केवली समुद्घात की अपेक्षा घटित होता है, इसलिए इन दोनों कर्मों का क्षायिक भाव कहा है। ये जहां जहां समुद्घात लिखा है ना, वो समुद्घात करना, क्रिया कर्म चतुर्थ गुण स्थान से होता है, इसलिए इस योग में इस कर्म के क्षायिक और क्षायोपशामिक दोनों भाव बन जाते हैं। मात्रा उपशमिक भाव घटित नहीं होता, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ मरा हुआ जीव मनुष्य और तिर्यंचों में नहीं उत्पन्न होता। वैक्रिक का योग और वैक्रिक मिश्र का योग में क्रिया कर्म के औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक तीनों भाव बन जाते हैं। कारण यह है कि देवों में क्षायिक और क्षायोपशमिक दृष्टि जीव तो उत्पन्न होते हैं, साथ ही इनमें द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव भी मरकर उत्पन्न होते हैं। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग छठे गुणस्थान में होता है, इसी से यहाँ तप कर्म का एकमात्र क्षयोपशमिक भाव कहा है। एक क्षयोपशमिक चारित्र की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव होता है। उपशम सम्यक्त और आहारक का योग एक साथ नहीं होते, इसी से इनके क्रियाकर्म के क्षायिक और क्षयोपशमिक दो भाव कहे हैं। कार्मण का योग में इरियापत कर्म और तप कर्म केवली समुद्घात की अपेक्षा, यहाँ ठीक लिखा है, घटित होता है। इसी से इस योग में उक्त दोनों कर्मों का एकमात्र क्षायिक भाव कहा है, शेष कथन सुगम है। अब वेद मार्गणा में घटित करेंगे। वेद मार्गणा के अनुवाद से तीन वेद वालों का तथा चार कषाय, अभी उसके साथ सिमिलर जो जो है उसको एक साथ बताएंगे, सामयिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयम का कथन ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं में इरियापत कर्म नहीं है। जब हम वेद वाले कहेंगे, वेद मार्गणा की अपेक्षा स्त्रीवेदी पुरुषवेदी नपुसक वेदी कहेंगे, तो वो कहाँ तक होंगे, तो नौवे गुणस्थान के पहले भाग तक। परंतु जब हम मनुष्यनी की बात करेंगे तो उनके तो 14 के 14 गुणस्थान होते हैं। यानी अपना बताने का क्राइटेरिया कौन सा है उसको देखना है। यानी जीव की बात करेंगे, वो श्रीवेद वाला जीव है, तो वो जीव तो अपगत वेदी होकर मोक्ष चला जाएगा, तो उसको कहेंगे इसके 14 गुणस्थान पाए जाते हैं। पर हम जब कहेंगे अपना क्राइटेरिया क्या है, हाँ, तो वेद मार्गणा में स्त्रीवेद की बात है या पुरुष वेद की, तो 9वे गुणस्थान के पहले भाग तक ही उनको ले लेना। तो उनके इरियापत होगा नहीं, इरियापत अपगत वेदी वालों को कहेंगे हम। अपगत वेद वालों के प्रयोग कर्म, समवधान कर्म और अधक कर्म का कथन ओघ के समान है। इरियापत कर्म और तप कर्म का औपशमिक और क्षायिक भाव है। 11वें गुणस्थान में उपशमिक भाव है और तप कर्म उपशम श्रेणी में औपशमिक भाव है और क्षायिक भाव है। इसी प्रकार वो कषाय है ना, वो हाँ वो कषाय वाले, यानी जैसे अपगत वेदियों को देखा वही बात अकषाय वालों में भी होगी। यथाख्यात संयम वाले केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जीवों के इरियापत कर्म और तप कर्म का उपशमिक भाव नहीं है। वो तो अकषाय वालों में घटित हो सकता है, यथाख्यात संयम वालों में घटित हो सकता है। परिहार शुद्धि संयत जीवों के सामायिक संयत जीवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का उपशमिक भाव नहीं है। अभी हमने याद किया था ना इनको, तपक कर्म का क्षयोपशमिक भाव है। तपक कर्म का क्षयोपशमिक भाव क्यों घटित किया? हाँ, चारित्र की अपेक्षा, क्योंकि क्षायिक चारित्र कब होगा? क्षपक श्रेणी में है ना, और यहाँ तो छठा सातवां ही गुणस्थान है उनका। इसलिए इनको तो सार्वभौमिक चारित्र ही होता है। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत जीवों के अवकाशाई जीवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके इरियापत कर्म नहीं है, दसवें गुणस्थान वाले को इरियापत नहीं होता। संयता संयत असंयत और तीन लेशा वालों के सामान्य तिरियंचों के समान भंग है। पीत और पद्मलेशा वालों के परिहार शुद्धि संयत जीवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का उपशमिक भाव है। परिहार शुद्धि संयत वालों को नहीं था। क्षायिक समय दृष्टियों के ओग के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का एकमात्र क्षायिक भाव कहना चाहिए। तो क्षायिक समय दृष्टियों के तप कर्म का कौन कौन से भाव हो गए? क्या कहते हैं आप देवेंद्र भाई? उसमें नहीं लिखा है? हाँ अच्छा, सोचो सोचो। तप कर्म के कौन कौन से भाव हो गए? तीनों भाव होंगे। अरे बहुत टाइम लगा है बताने को। क्षायिक तो समय दृष्टि है, उसका चारित्र कौन सा हो सकता है? तीनों हो सकते हैं ना। वो तो क्षायिक समय दृष्टि हो तो उपशम श्रेणी भी चढ़ेगा, तो हम कहेंगे औपशमिक चारित्र है। क्षेपक श्रेणी चढ़कर केवली होगा तो हम कहेंगे क्षायिक चारित्र है। और छठे सातवें में है तब तक कहेंगे उसको औपशमिक चारित्र है। ये तप कर्म की बात। वेदक सम्यक दृष्टियों के प्रयोग कर्म और तप कर्म का कौन भाव है? क्षायोपशमिक भाव है। तो उसमें क्षायिक भाव घटित होगा कि नहीं होगा? हाँ, वेदक सम्यक तो चौथे से सातवें तक ही पाया जाता है, और क्षायिक चारित्र जो है वो तो ऊपर होता है श्रेणी में। समवदान कर्म और अधक कर्म का उदयिक भाव है। उपशम सम्यक दृष्टियों के प्रयोग कर्म समवधान, एक म एक्स्ट्रा हुआ, समवदान कर्म और अधक कर्म का कथन ओघ के ओध हुआ है, ओघ के समान है। इरियापत कर्म का उपशमिक भाव है। तप कर्म और क्रिया कर्म का औपशमिक भाव है। इतनी विशेषता है कि इनके तप कर्म का क्षाउपशमिक भाव भी है। ये कैसे घटित होगा? हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व के साथ सातवें गुणस्थान में है ना, संयम प्राप्त किया उपशम सम्यक्त्व के साथ, प्रथम उपशम के साथ, या श्रेणी चढ़ने के पहले द्वितीय उपशम भी है, अभी छठे सातवें में है। हाँ? उसकी तो बात नहीं, वो तो यहाँ तो मुख्यता से क्या है, देखो क्या कहते हैं, उपशम सम्यक दृष्टि है। और उपशम सम्यक के साथ तप कर्म कब होगा? प्रथम उपशम के साथ संयम प्राप्त होगा तब होगा। उपशम श्रेणी के चढ़ने के शुरू में भी अगर द्वितीय उपशम किया हो तभी भी होगा, और श्रेणी चढ़कर बाद में फिर उतरा तो भी होगा उसके, क्योंकि श्रेणी में भी होगा, परंतु श्रेणी में होगा तब उसको हम उसको क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। चारित्र उसका सॉरी क्षयोपशमिक मुझे उपशमिक कहना था, श्रेणी में उसका औपशमिक भाव होगा, और जब छठे सातवें में है तब उसको क्षयोपशमिक भाव होगा। उपशम सम्यक्त्व के साथ उसका क्षयोपशम सम्यक्त्व है, वो उपशम सम्यक्त्व है, जब वो छठे सातवें गुणस्थान में है तब उसका चारित्र है वो क्षयोपशमिक चारित्र है। और जब वो श्रेणी में है, उपशम सम्यक्त्व के साथ श्रेणी में है, तब उसका उपशमिक चारित्र है, तब तपकर्मा उपशमिक कहेंगे। हाँ नहीं शायक होगा तो उपशम सम्यक तो नहीं है वो, औपशमिक सम्यक दृष्टियों की बात चल रही, वो क्षपक श्रेणी नहीं चलेगा। अनाहारकों का कथन कार्मण का योगियों के समान है। इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ, जल्दी समाप्त हुआ। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो। मयंक भाई।